एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, एकत्र फाउंडेशन के ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जो इतिहास, रहस्य, कला और दर्शन का एक कमाल का संगम है। ओरहान पामुक का विश्वविख्यात उपन्यास मेरा नाम लाल,
तुर्की में बिनिम आदम किरमिजी।
हाँ पामुक, 2006 के नोबेल पुरस्कार विजेता और तुर्की के शायद सबसे अहम समकालीन लेखकों में से एक।
बिल्कुल, और उनकी लेखनी की खासियत, वो इस्तांबुल शहर, उसके प्रति उनका गहरा लगाव।
हाँ, और वो खास किस्म की उदासी जिसे वो यूजुन कहते हैं।
यूजुन, हाँ।
ये सिर्फ उदासी नहीं है, है ना, कुछ और है।
हाँ, मतलब शहर की एक सामूहिक मीठी सी लगने वाली लेकिन गहरी ऐतिहासिक उदासी, एक सांस्कृतिक हानि का एहसास।
अच्छा, और साथ ही वो पूर्व और पश्चिम के बीच का तनाव,
हमेशा परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व, ये उनकी लगभग हर रचना में मिलता है।
तो मेरा नाम लाल हमें ले जाता है 1591 के इस्तांबुल में, सुल्तान मुराद तृतीय का दौर।
जी, ऑटोमन साम्राज्य शक्तिशाली तो है पर अंदर अंदर एक कश्मकश चल रही है, पश्चिमी प्रभाव बढ़ रहा है और साथ ही धार्मिक कट्टरता भी।
हाँ, और उपन्यास एक हत्या के रहस्य के इर्द गिर्द बुना गया है, लेकिन ये सिर्फ जासूसी कहानी तो नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये कला के दर्शन, पहचान के संकट और दो सभ्यताओं के टकराव की कहानी ज्यादा है।
इसका जो मूल आधार है, सुल्तान के लिए एक गुप्त किताब तैयार हो रही है,
हाँ, और उसमें चित्र पारंपरिक इस्लामी लघु चित्र शैली में नहीं बन रहे,
बल्कि पश्चिमी, मतलब विनिशियन शैली में।
जी, और यही बात उस दौर के लिए विस्फोटक थी।
क्योंकि पारंपरिक इस्लामी कला में यथार्थवाद, पर्सपेक्टिव और कलाकार का सिग्नेचर,
ये सब एक तरह से ईश्वनिंदा मानी जाती थी।
अल्लाह की दुनिया की नकल, जबकि पश्चिमी पुनर्जागरण कला इन्हीं चीजों का जश्न मना रही थी।
तो आज हमारी चर्चा का मकसद यही है, इस जटिल उपन्यास की परतें खोलना।
आर्ट जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकती है,
और कहानी की शुरुआत ही इतनी नाटकीय और असाधारण है। पहला अध्याय किसी जीवित पात्र का नहीं बल्कि एक लाश का है।
हाँ, एलिगेंट एवेंडी, एक लघु चित्रकार जिसे मारकर कुएं में फेंक दिया गया है, वो अपनी मौत की कहानी सुना रहा है।
बिल्कुल, ये शुरुआत न सिर्फ रहस्य को स्थापित करती है बल्कि उपन्यास के उस अलौकिक मल्टी वॉइस अंदाज की भूमिका भी बांध देती है,
जहां मरे हुए जिंदा इंसान, यहां तक कि चीजें भी बोलती हैं।
हाँ, माहौल में एक अजीब सी अनिश्चितता और खौफ छा जाता है,
और इसी तनाव भरे माहौल में एंट्री होती है नायक की, कारा, मतलब काला।
हाँ, 12 साल की लंबी गैर हाजिरी के बाद वो इस्तांबुल लौटता है।
उसे बुलाया है उसके चाचा एनिश्टे एफेंडी ने।
जी, एनिश्टे एफेंडी ही उस विवादास्पद गुप्त किताब परियोजना के मुखिया हैं जिसमें वो पश्चिमी शैली के चित्र मनवा रहे हैं।
तो कारा के लौटने के मकसद दो हैं।
हाँ, यूँ समझिए, पहला चाचा की इस जोखिम भरी परियोजना में मदद करना, और दूसरा जो शायद उसके दिल के ज्यादा करीब है,
शेकुरे, उसकी बचपन की प्रेमिका अनिष्टे की बेटी, उसका दिल जीतना।
बिल्कुल, लेकिन आते ही उसे एक और काम मिल जाता है,
एलिगेंट अफेंदी के कातिल का पता लगाना।
हाँ, और कातिल यकीनन बाकी बचे तीन लघु चित्रकारों में से ही कोई है, तितली, सारस और जैतून,
जो उसी गुप्त परियोजना पर काम कर रहे थे।
जी,
आपने कहा जोखिम भरी परियोजना, ये जोखिम सिर्फ सुल्तान की नाराजगी का नहीं था, मतलब कुछ और गहरा था, वैचारिक, धार्मिक।
हाँ बिल्कुल, यही टकराव तो उपन्यास की आत्मा है। पारंपरिक इस्लामी लघु चित्रकार दुनिया को अल्लाह की नजर से चित्रित करना चाहते थे,
मतलब एक शाश्वत, टाइमलेस दृष्टि।
हाँ, जिसमें व्यक्तिगत अनुभव या पर्सपेक्टिव का कोई स्थान न हो, चीजों को वैसा बनाना जैसा उन्हें होना चाहिए, न कि जैसा वे इंसान की आंख से दिखती हैं।
और सबसे जरूरी बात, कलाकार का कोई व्यक्तिगत हस्ताक्षर या स्टाइल नहीं होना चाहिए।
जी, माना जाता था कि कला तो अल्लाह की रचना का आईना है, कलाकार सिर्फ एक माध्यम, अपनी शैली दिखाना तो अहंकार था, अल्लाह के बराबरी करने की कोशिश।
और उधर पश्चिमी पुनर्जागरण कला, वो ठीक इसके उलट थी।
बिल्कुल, व्यक्तिवाद, यथार्थवाद, कलाकार की अपनी खास नज़र, उसकी स्टाइल का जश्न। लियोनार्डो, माइकल एंजेलो, वो अपनी शैली के लिए तो जाने जाते हैं।
तो ये सिर्फ तकनीक का फर्क नहीं था, ये तो दुनिया को देखने के, उसमें इंसान की जगह समझने के दो अलग नज़रिए थे।
सही कहा, और इसी टकराव के बीच एनिश्टे एफेंदी की ये गुप्त किताब वो एक चिंगारी का काम करती है।
और इसी वैचारिक युद्ध भूमि में कारा अपनी जांच शुरू करता है।
हाँ, कारा का चरित्र खुद भी इसी पूर्व और पश्चिम के द्वंद्व का प्रतीक है। उसने दुनिया देखी है, पश्चिमी विचारों से वाकिफ है, पर जड़े इस्तांबुल में है।
और उसकी जांच भी पारंपरिक जासूसों जैसी नहीं है। वो कोई फिंगरप्रिंट्स या सबूत नहीं ढूंढ रहा।
नहीं, वो कातिल को कलाकारों की कला के जरिए पकड़ना चाहता है।
उनकी शैली, उनके बनाए चित्रों में छिपी भावनाओं और दर्शन को समझकर।
हाँ, एक तरह से कला की आत्मा की जासूसी।
और उसकी मुख्य प्रेरणा जाहिर है शुकुरे।
हाँ, शुकुरे के प्रति उसका गहरा सालों पुराना प्यार, वही उसे इस खतरनाक खेल में बनाए रखता है।
ये दिलचस्प है कि कारा कला में जवाब ढूंढ रहा है, लेकिन शुकुरे, जिसके लिए वो ये सब कर रहा है, उसका यथार्थ तो कहीं ज्यादा जमीनी और कठोर लगता है। वो सिर्फ एक लव इंटरेस्ट तो नहीं है।
अरे बिल्कुल नहीं, शुकुरे उपन्यास की सबसे मजबूत और जटिल पात्रों में से एक है। वो सिर्फ कारा के प्रेम का लक्ष्य नहीं है, वो एक समझदार, प्रैक्टिकल और बहुत हिम्मती औरत है, और एक बहुत मुश्किल स्थिति में फंसी हुई है।
उसका पति, वो जंग से लापता है।
हाँ, 4 साल से। तो कानूनन वो ना तो विधवा है ना विवाहित। समाज में उसकी स्थिति डामाडोल है। 2 बेटे हैं पालने को।
और देवर हसन का दबाव अलग, वो उससे शादी करना चाहता है।
जी, इन सब के बीच कारा का लौटना उसके लिए उम्मीद भी लाता है और उलझन भी। वो उस पुरुष प्रधान समाज के नियमों के अंदर रहते हुए भी अपनी इच्छाओं और सुरक्षा के लिए रास्ते तलाशती है।
वो परिस्थितियों को अपने हक में मोड़ना जानती है।
बिल्कुल, ये चीज उसे कारा के आदर्शवादी प्रेम से कहीं ज्यादा यथार्थवादी बनाती है।
अच्छा, तो एक तरफ ये कारा और शेकुरे की उधेड़बुन है और दूसरी तरफ कातिल की आवाज, वो भी हमें सीधे संबोधित करती है।
हाँ, ये उपन्यास की एक और कमाल की तकनीक है, बहुस्वरता, पॉलीफोनी।
हमें पता है कातिल उन तीनों में से ही एक है, तितली, सारस या जैतून, पर कौन?
और कई अध्याय उसी गुमनाम कातिल के नजरिए से हैं। वो अपनी पहचान छिपाता है, लेकिन अपने किए को सही ठहराता है।
वो पश्चिमी कला को एक जहर मानता है, ईश्वर निंदा।
हाँ, उसके मुताबिक ये शैली अल्लाह की पवित्र दृष्टि को इंसान के घमंड और उसकी खामियों भरी नजर से बदल देती है।
उसकी दलीलें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि कैसे कला और आस्था के नाम पर कट्टरता जन्म लेती है।
सा को भी जायज ठहराया जा सकता है। ये सिर्फ एक कातिल का बयान नहीं, बल्कि एक विचारधारा की आवाज है जो खुद को खतरे में महसूस कर रही है।
और इसी वैचारिक तूफान के केंद्र में थे एनिश्टे एफेंदी।
जी, शेकुरे के पिता, कारा के चाचा और इस पूरी गुप्त परियोजना के कर्ता धर्ता।
वो एक बुद्धिजीवी थे, वेनिस गए थे, वहां की कला से प्रभावित थे।
शायद वो सोचते थे कि दोनों शैलियों का संगम मुमकिन है। कला सरहदों से परे होती है, लेकिन वो शायद उन कट्टरपंथी जुनूनों की गहराई को समझ नहीं पाए
जो उनके अपने विचारों से भड़क सकते थे।
हाँ, वो प्रगतिशील सोच के प्रतीक थे, लेकिन उनकी यही सोच उन्हें कातिल का दूसरा निशाना बना देती है।
उनकी हत्या कहानी में एक बड़ा मोड़ लाती है।
हाँ, और कारा और शेकुरे के लिए हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं।
और एनिश्टी की मौत के बाद एक और अहम पात्र पूरी तरह से इस गुत्थी को सुलझाने में शामिल होता है, उस्ताद उस्मान।
हाँ, उस्ताद उस्मान सुल्तान की कार्यशाला के प्रमुख, कट्टर परंपरावादी, पुरानी शैली के शिखर माने जाते हैं।
वो तो एनिश्टे के पश्चिमी शैली की तारीफ से बिल्कुल खुश नहीं थे।
बिल्कुल नहीं, उनका तो मानना था कि एक लघु चित्रकार की कला का चरम तब आता है जब वो इतना माहिर हो जाए कि अपनी आंखें फोड़ने के बाद भी सिर्फ अल्लाह की दी हुई याददाश्त और नजर से बेहतरीन चित्र बना सके।
कमाल की बात है, ये सोच ही उस वक्त की कला दृष्टि की गहराई दिखाती है।
जी, और एनिश्टे की मौत, जिसे वो अपनी कला और परंपरा का अपमान मानते हैं, उन्हें आखिरकार इस जांच में कारा का साथ देने पर मजबूर करती है। अब ये सिर्फ हत्या का मामला नहीं रहा,
बल्कि परंपरा की रक्षा का समाल बन गया है।
एनिश्टे अफेंदी की हत्या के बाद स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। मरने से पहले वो कारा को एक इशारा दे जाते हैं
कि कातिल की पहचान उस गुप्त किताब में बने एक अधूरे घोड़े के चित्र में छिपी है।
हाँ, अब शक के दायरे में बाकी बचे तीनों लघु चित्रकार हैं, तितली, सारस और जैतून। उन्हें पूछताछ के लिए कार्यशाला में ही एक तरह से नजरबंद कर दिया जाता है।
और यहीं से उपन्यास का क्लाइमैक्स तैयार होता है, जो आर्ट हिस्ट्री और जासूसी थ्रिलर का मिश्रण है।
बिल्कुल, और उस्ताद उस्मान का जांच में शामिल होना इसे और दिलचस्प बना देता है।
हाँ, वही व्यक्ति जो पश्चिमी शैली से चिढ़ता था, अब उसी के विश्लेषण से कातिल को पकड़ने निकला है। ये विडंबना कमाल की है।
उस्ताद उस्मान और कारा सुल्तान के विशाल पुस्तकालय उसके खजाने में जाते हैं, जहां सदियों पुरानी पांडुलिपियां और लघु चित्र रखे हैं।
और उनका मिशन है उस अधूरे घोड़े की शैली का मिलान कार्यशाला के हर जाने माने कलाकार के पुराने कामों से करना।
ये एक अद्भुत सीन है। वो घंटों, शायद दिनों तक सैकड़ों चित्र खंगालते हैं।
हर छोटी से छोटी बारीकी पर ध्यान देते हुए घोड़े के नथने का आकार, गर्दन का घुमाव, टांगों का चित्रण,
रंगों का इस्तेमाल। क्योंकि पारंपरिक कला में भले ही सिग्नेचर मना हो, हर कलाकार की एक खास अनजाने में बनी शैली एक दस्तखत तो होता ही है,
जिसे सिर्फ एक पारखी नजर ही पहचान सकती है।
और आखिरकार उस्ताद उस्मान की अनुभवी आंखें उस शैली को पहचान लेती हैं।
किसकी शैली?
वो अधूरा घोड़ा जैतून का काम है, वही जैतून जो सबसे ज्यादा परंपरावादी होने का दावा करता था।
ओहो, तो पहचान हो जाने के बाद टकराव तो होना ही था।
हाँ, अंतिम सामना रात के अंधेरे में उसी सुनसान कार्यशाला में होता है जहाँ यह सब शुरू हुआ था।
जैतून अपना जुर्म कबूल करता है?
हाँ, कबूल करता है, लेकिन बिना किसी पछतावे के। वो जोरदार तरीके से अपने किए का बचाव करता है।
क्या दलील देता है वो?
वो कहता है कि उसने एलिगेंट अफेंडी और एनिस्टे अफेंडी को इसलिए मारा क्योंकि वे पश्चिमी व्यक्तिवाद और यथार्थवाद के जहर से इस्लामी कला की पवित्रता को भ्रष्ट कर रहे थे।
उसके लिए ये हत्याएं कला को बचाने के लिए किया गया एक जरूरी बलिदान थी।
बिल्कुल, बहस जल्दी ही हिंसक हाथापाई में बदल जाती है। जैतून उस्ताद उस्मान पर हमला करता है, शायद उन्हें अंधा करने की कोशिश में,
ताकि वो परंपरा के अनुसार सही दृष्टि पा सके।
हाँ शायद, लेकिन कारा बीच में आ जाता है और आत्मरक्षा में जैतून मारा जाता है।
तो कातिल का अंत होता है, लेकिन ये अंत कई सवालों और एक गहरे अवसाद को पीछे छोड़ जाता है।
हाँ, इस हिंसा के साथ ही लघु चित्रकारों की वो दुनिया, वो परंपरा जैसे बिखर जाती है।
और वो गुप्त किताब जो इस सारे फसाद की जड़ थी,
वो अधूरी रह जाती है, दो दुनियाओं के टकराव का एक अधूरा रक्तरंजित स्मारक।
कारा और शेकुरे वो अंततः एक साथ अपना जीवन शुरू करने के लिए आजाद हैं।
हाँ, लेकिन उनकी ये नई शुरुआत भी उसी हिंसा, कला और विचारधाराओं के टकराव की नींव पर टिकी है।
उपन्यास का उपसंहार बताता है कि समय के साथ पश्चिमी शैली ही कला पर हावी हो गई, जिसका डर जैतून जैसे लोगों को था।
इतिहास की एक निर्मम विडंबना है।
और उस्ताद उस्मान, उनका क्या होता है?
अपनी परंपरा को मरते हुए देखकर और शायद हत्यारे की पहचान के लिए पश्चिमी शैली के विश्लेषण का सहारा लेने के अपराध बोध से ग्रस्त होकर वो एक अंतिम चरम कदम उठाते हैं।
क्या करते हैं वो?
अपनी कार्यशाला के एकांत अंधेरे में बैठकर वो जानबूझकर एक सुनहरी सुई से अपनी दोनों आंखें फोड़ लेते हैं।
क्या?
हाँ, वो दावा करते हैं कि अब उन्होंने पुराने उस्तादों की तरह पूर्ण दृष्टि हासिल कर लिया। वो दृष्टि जो बाहरी दुनिया की नश्वर चीजों को नहीं, बल्कि अल्लाह की बनाई दुनिया की आंतरिक शाश्वत स्मृति को देखती है।
ये तो बहुत शक्तिशाली, दिल दहला देने वाला और त्रासद क्षण है।
हाँ, परंपरा के प्रति समर्पण और उसके अंत दोनों का प्रतीक।
वाकई एक जटिल और बहुस्तरीय कहानी है। अगर हम इसके मुख्य विषयों को समेटें तो सबसे पहले तो वही परंपरा बनाम आधुनिकता, या कहें पूर्व बनाम पश्चिम।
हाँ, ये सिर्फ कला शैलियों का टकराव नहीं है, ये जीवन दृष्टि, दर्शन और पहचान का संघर्ष है। क्या ये दोनों ताकतें साथ रह सकती हैं? यह टकराव जरूरी है।
उपन्यास ये सवाल पाठक के सामने छोड़ देता है। फिर दूसरा अहम विषय, कला और पहचान की प्रकृति।
कला का मकसद क्या है? दुनिया को जैसा है वैसा दिखाना, या जैसा उसे होना चाहिए वैसा दिखाना? कलाकार की भूमिका क्या है?
माध्यम या सृजनकर्ता, और हस्ताक्षर या शैली का क्या महत्व है?
कातिल के लिए शैली अहंकार और पाप है, लेकिन विडम्बना देखिए, उसी की अनूठी शैली ही उसकी पहचान का सुराग बनती है।
ये दिखाता है कि कला सिर्फ सुंदरता की चीज नहीं, बल्कि पहचान और विचारधारा का युद्ध क्षेत्र भी हो सकता है।
बिल्कुल। तीसरा, कहानी कहने की कला और परिपेक्ष्य का महत्व।
हाँ, उपन्यास की संरचना ही इसकी गवाह है। बहुस्वरता,
पॉलीफनी,
दर्जनों कथावाचक, जिंदा मुर्दा, इंसान जानवर, यहाँ तक कि रंग और शैतान भी।
मैं तुम्हारी प्यारी शेकुरे हूँ, मुझे कातिल कहा जाएगा, मैं कुत्ता हूँ, मैं लाल रंग हूँ।
हाँ, सब मिलकर एक पच्चीकारी बनाते हैं जो हमें सिखाता है कि सच एक नहीं होता, वो कई दृष्टिकोणों का योग होता है।
और पामुक मेटाफिक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं, पात्र पाठक को सीधे संबोधित करते हैं।
ये जानते हुए कि वे एक कहानी का हिस्सा है, यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास खुद कहानियों से ही बनता है और इन बड़े वैचारिक सवालों के बीच प्रेम, इच्छा और व्यावहारिकता का मानवीय धागा भी है।
हाँ, कारा का आदर्शवादी प्रेम और शेकुरे की व्यावहारिक जरूरतें, उसकी सामाजिक मजबूरियां, उनका रिश्ता दिखाता है कि व्यक्तिगत भावनाएं भी बड़े सामाजिक और ऐतिहासिक दबावों से अछूती नहीं रह सकती।
और अंत में अंधापन और दृष्टि का वो शक्तिशाली रूपक।
हाँ, शाब्दिक अर्थ में भी उस्ताद उस्मान का खुद को अंधा करना और लाक्षणिक अर्थ में भी सत्य को देख पाना, कला के पीछे छिपे अर्थ को देख पाना या फिर कट्टरता में अंधे हो जाना।
पूरी कहानी ही एक तरह से सही दृष्टि की तलाश है।
उपन्यास की शैली भी उतनी ही अनोखी है जितनी इसकी कहानी। ये बहुस्वरता पाठक को किसी एक नायक या दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत होने से रोकती है, उसे एक्टिव रखती है,
पहेली के टुकड़ों को जोड़ने पर मजबूर करती है और मेटाफिक्शनल तत्व।
हाँ, वो पाठक और कहानी के बीच एक संवाद बनाते हैं।
हाँ, उसे सोचने पर मजबूर करते हैं कि वो जो पढ़ रहा है वो कितना वास्तविक है।
उपन्यास प्रतीकों से भी भरा पड़ा है,
बन जाता है। अंधापन ज्ञान या आध्यात्मिक दृष्टि का विरोधाभासी प्रतीक है। कुआं मृत्यु, रहस्य और दबे हुए सच का।
पूरी कहानी को तुर्की के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चौराहे पर खड़े होने का एक रूपक, एलेगोरी भी कह सकते हैं।
बिल्कुल।
हमेशा पूर्व और पश्चिम के बीच संतुलन साधने की कोशिश करता हुआ तुर्की, और पात्रों की कथनी और करनी के बीच की विडंबना, आयरनी, कहानी को और गहरा बनाती है।
सचमुच मेरा नाम लाल हमें दिखाता है कि कला, पहचान और विश्वास ये सिर्फ बौद्धिक बहस के मुद्दे नहीं है।
बिल्कुल, ये वो शक्तिशाली ताकतें हैं जो इंसानी जिंदगियों को गढ़ती हैं, अद्भुत सौंदर्य रच सकती हैं और हाँ, लोगों को भयानक हिंसा तक भी धकेल सकती हैं, जिससे सांस्कृतिक मुठभेड़ों की जटिल और अक्सर दुखद हकीकत उजागर होती है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।